अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है मैं भागलपुर में रहता हूँ और ये जो खित्ता है ये बहुत जरखेज खित्ता है। जरखेज से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रई पैदावार होती है, जरखेज से मुराद ये है कि ये फनकारों की धरती है जहाँ फन पैदा होता है। अगर आप यहाँ के जो देहात में रहने वाले लोग जो कि कपड़े के ऊपर कशीदाकारी करते हैं और ये जो चुनरी के सूट बनाते हैं और जो ब्लू पॉटरी बनाते हैं और जो और हाथ से नक्शो निकार बनाते हैं उनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा कि इतना बड़ा फन यहाँ छुपा हुआ है और उसकी ना हुकूमती सतह पर कोई पजीराई हो रही है ना कोई इज्तमाही सतह पर कोई पजीराई हो रही है। वो फन जो है वो पूरी दुनिया में जा सकता है। उन्हीं फनकारों में से एक फनकार महज एक इतफाक हुआ कि आज मेरी उनसे तारुफ हुआ। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं इकबाल अरशद साहब जो खुद भी फोटोग्राफर हैं और शायर भी हैं, तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया गुलजार नदीम साहब के साथ जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनका ताल्लुक भी इसी जनूबी पंजाब के साथ है और इनका जो फन है वो है कैलीग्राफी और खत्ताती, और ये कोई आम मामूली फनकार नहीं है। एक पाकिस्तान के और बहुत बड़े मुहक्किक अब्दुल हफीज साहब ने अपनी किताब जिसका नाम है मेरे अहद के चंद बाकमाल लोग उसमें इनका जिक्र किया है, उसके जरिए से इनका तारुफ लोगों तक हुआ जिसमें इनके फन पर बात की गई है। अच्छा, ये महज आर्टिस्ट नहीं है, ये बेसिकली रिसर्चर हैं मुहक्किक, और लाइब्रेरियां खंगाल कर सारी हिस्ट्री जो है खत्ताती की उसको ये समझते हैं, उसको ये जानते हैं, उस पर लिखते हैं और फिर खुद भी ना सिर्फ ये कि बहुत बड़े खत्तात हैं बल्कि खत्ताती के फन के उस्ताद भी हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपसे बात जो है ना सिर्फ एक तो मुख्तसर करेंगे, दूसरा इसके रेफरेंस से करेंगे। ये मुझे अभी दिखा रहे थे, ये सिर्फ नमूना है जिसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्होंने लिखा हुआ है और उसके बाद ये इस तरीके से आप देखिए ये क्या है, जरा बताइए ये बेहतर तरीके से बताइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलजार नदीम टेलीग्राफर, मैं अदूर आपका मशकूर हूँ और आपकी बातें सुन सुनकर और हमें जो है इनक्रेज मिलती है और हमें फ़न को जो है ना बका मिलती है। आप जैसे लोग जो फन की और फनकारों की सरपरस्ती करने वाले और आपकी बातों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मैं आपका मशहूर हूँ। तो हजूर मुझे तकरीबन 25 साल हो गए इस फन से वापस का, और मैं तहकीक की और वो तहकीक रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से चली और तकरीबन 156 ममालिक में सुनी गई, और अब्दुल हफीज़ साहब जो इब्ने खताअत भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, उन्होंने मेहरबानी की, वो अक्सर बेशतर मुझे फ़न के हवाले से राय भी देते रहते हैं। मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, राय भी देते रहते हैं। मेरे उस्ताद उधर जहांगीर साहब जिन्होंने मुझे यहाँ तक तामीर किया और मुझे फ़न के हवाले से बताया, तहकीक के हवाले से बताया, तजदीद खताती तजरीद खताती और तुगरा के हवाले से बताया और पेंटिंग के हवाले से बताया कि कैलीग्राफी पेंटिंग में कैसी होती है, कतास पर किस तरह होती है, कलम के साथ किस तरह होती है। तो ये बहुत वसी सब्जेक्ट है जिस पर मैंने ये मेहनत की। तो मैं इसको जो है ना तीन हिस्सों में डिवाइड किया, खुश खत्ती, खुश नवीसी और खताती। खुश नवीसी जो है वो तकरीबन 99% लोगों की ज़रूरत है, जिस तरह पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, बाल पॉइंट से लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बताया और अब्दुल रफी साहब ने बताया कि आप बाल पॉइंट से लिखने के हवाले से लोग क्यों कतराते हैं, इस हवाले से भी बताया कि ये ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर की ज़रूरत है। तो मैंने इसी चीज़ को तीन हिस्सों में डिवाइड करके इसको सबसे पहले जो मैं लेसन है जो तरतीब दिया है वो है खुश खत्ती का, यानी कि अच्छी लकीर।
यानी हम लिखे, आम बंदा लिखे तो साफ सुथरा,
साफ सुथरा लिखे वो किस।
तो डॉक्टरों को तो बहुत जरूरत है, डॉक्टरों का तो मजाक भी ये बनता है ना कि उनका जो नुस्खा होता है
सही बात,
वो लिखे मूसा पड़े खुदा
सही बात है। तो फिर खुश नवीसी जो है वो खफी कलम से यानी कि छोटे पेन से कट वाले मार्कर से लिखे, और फिर जो खताती जो है वो खताती जिस तरह मैं पेंटिंग बनाता हूँ, जिस तरह मैं ये खताती कर्तास पर करता हूँ, जिस तरह मुख्तलिफ अनवा अकसाम के खतूत को मिला के जदीद खताती करता हूँ, रिवायती खताती करता हूँ, उसको खताती कहते हैं और खतात उसे बोलते हैं।
ये फरमाइए ये क्या है आपका फन का ये जो नमूना है?
ये अगर मैंने तीन हिस्सों में तकसीम किया है, तजदीद खताती, तजरीद खताती और रिवायती खताती। और मैंने तजदीद खताती के उन्वान से जो तुगरा थे और किसी ज़माने में बादशाह जो थे वो इसको दस्तखत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, फिर ये आरायशी इमारतों के लिए इस्तेमाल हुआ,
ठीक है, वो खत खताती का वो तरीका,
ये वो तरीका। फिर मैंने इनको अपने अंदाज में जो है ना 300 तर्जों में 300 पोर्शन में डिवाइड किया और हर पोर्शन में 10 तर्ज़ है, और ये 3000 बनती है। फिर इसके साथ और काम करने, कलम के साथ किस तरह, ब्रश के साथ किस तरह, वो तजरीद खताती,
यानी मैं ये समझा हूँ कि ये 3000 डिफरेंट तरीकों से जिनकी एक रवायत है
जी,
आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक नमूने के तौर पर लिखना, ये तो सिर्फ एक सैंपल है ना, तो जब इसको कलर्ड तरीके से आप पूरे कैनवस के ऊपर लिखते हैं तो जाहिर है उसकी फिर एक और शक्ल निकल के आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक तहकीक का काम है,
और मैंने 4 कलर को जो है ना उससे 4000 कलर बनाने का तरीका भी मुतारिफ करवा रहा हूँ, वो इसके साथ में।
अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल के इस दौर में जिसमें लोग बहुत स्पीड से जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसा ही हर चीज का एक महवर है और उसके लिए डिजिटल जिंदगी है, इसमें जहाँ लोग शायरी को पीछे छोड़ गए, कुतुब बीनी को पीछे छोड़ गए और फन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मदरूक होते गए, आपके ख्याल में आज का एक नौजवान उसके लिए क्या अट्रैक्शन है कि वो खताती सीखे, क्या उसके लिए रेलेवेंट है ये बात?
बिल्कुल रेलेवेंट है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुक्म दिया था कि 10 मुसलमानों को पढ़ते और लिखना, लिखना और पढ़ना, ये दोनों चोरी दामन का साथ है,
लिखना
ये जरूरी है, क्योंकि ये लिखने के हवाले से आप समझ लीजिए, साइन बोर्ड को लिखना खताती नहीं कहते, और ये किताबत करने को खताती नहीं कहते, वो खताती जिसको खुश खत अंदाज में लिखा जाए। तो किसी हदीस शरीफ में एक मफहूम था जिसे खुर्शीद गौर बलम साहब ने उसको कोट किया था कि जिसने खूबसूरत अंदाज में, जिसने खूबसूरत अंदाज में बिस्मिल्लाह लिखी वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये जबान से पढ़ना और खामोश लकीर से इजहार करना, ये दोनों सवाब के काम है। और जिस तरह कुरान में आता है, मैं यहाँ इस अंदाज दे कि नून वल कलम मौजूद करूँ, मुझे कसम है कलम की और लिखी हुई, कि जिस तरह कुरान का माना महफूज है और क्यामत तक महफूज है, कुरान महफूज है और उसका माना भी क्यामत तक महफूज है, इसी तरह कलम की जरूरत क्यामत तक रहेगी। तो हजूरे वाला बाल पॉइंट से लिखना भी तो खताती कह जाती है, ये आज स्कूलों में 99% इसकी जरूरत है, और ये फनकार अब ना पैद होते जा रहे हैं और इस तरह के कातुरी जाल अरूद पर है, अब ना साद कैन पैदा हो रहा है, ना सलम कमाल पैदा हो रहा है, ना अब्दुल वजीद प्रवीण रकम साहब आ रहे हैं, जैसे अलामा इकबाल कहते थे कि अगर ये खताती छोड़ देंगे तो मैं शायरी छोड़ दूंगा। तो अब इसकी उस दौर से ज्यादा जरूरत है कि बच्चे जबान से इजहार नहीं कर पाते, जबान से इजहार करना उसका माना कुछ का कुछ हो जाता है, उनको मिला का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि सीन और स्वाद का वजूद किस तरह आया और जीम का वजूद किस तरह आया, बा का वजूद किस तरह आया, ये उस दौर से लेकर अब जरूरत है। अब ईरान में 5वीं और 10वीं वाले को सनद नहीं दी जाती जब तक उसके पास खताती की सनद ना हो।
अच्छा ये बताइए, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ ताकि वो हमारे बहुत तबीयत भी ना हो ये गुफ्तगू, ताकि उसको लोग तवज्जो से सुन सकें। मैं ये चूंकि आप तो जैसे आपने बताया कि आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, पुरानी किताबें खंगालते रहते हैं, फिर घंटों आप जो है अपनी मशक करके उस पर करते रहते हैं, उस पर खर्चा भी आता है सारा, और आपका रोजगार का कोई और जरिया भी नहीं, अगर आप कोई और रोजगार नौकरी करेंगे जॉब करेंगे तो इस पर यकसुई नहीं दे सकेंगे, तो वो जज्बा तो आपका अपनी जगह पर है, शौक तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको कोई सिलसिले में आपके अपने लिए भी और फनकारों के लिए आपको लगता नहीं है कि इसकी कदरदानी वैसे नहीं हो रही, और उसके लिए आपके जहन में क्या सजेशंस हैं कि हो सकता है ये वीडियो किसी तक पहुंचे और वो उसको।
मेरी दो चीज़ें थी, जब मैं तहकीक कर रहा था तो मेरा जज्बा मुझे सोने नहीं देता मैं क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद तहकीक के हवाले से मैं ये पहला जवाब दे रहा हूँ, फिर आगे चल कर तो वो तहकीक जब मैंने की तो फिर जब मैंने आपको सुना तो मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर खताती के हवाले से हिस्ट्री ने मुझे बहुत काम दिया पहले नंबर पर, तो ये दूसरे नंबर पर ये कि इसके लिए क्या है, अगर हुकूमत थोड़ा सा इस पर तवज्जो दे दे हमारा ये फंड डूबता हुआ ये जिंदा हो जाएगा। आज भी पाकिस्तान का खताब है जो मस्जिद नबी पे काम कर रहा है बगैर सरपरस्ती के, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर ये वो जिस अलामा इकबाल कहते हैं जरा नम हो तो ये मट्टी के हवाले
बड़ी
सरखेज है साकी, तो ये जरूरत है। मैं जितना टैलेंट मैं पाकिस्तान में देखता हूँ इतना कहीं भी नहीं पाता, मैं बच्चों को मुफ्त दिखाता हूँ और कई बच्चे ऐसे हैं जो इम्तिहानात में रह जाते हैं। और फिर आपने कहा कि रोजगार के हवाले से, वो किसी ने क्या खूब कहा था कि वो एक शेर है बहुत खूबसूरत है, शौक अगर हो रहनुमा तो कोई मुश्किल नहीं है, शौक मगर मुश्किल से रहनुमा होता है, ये शौक जब इश्क में ढलते हैं तो फिर रोटी रोजी की फिक्र नहीं रहती, मुश्किल तो आती है फिर इंसान को अपने।
असल में आपकी रोटी रोजी की फिक्र आपकी फिक्र तो नहीं है, मगर ये हमारी फिक्र होनी चाहिए, ये माशरे की फिक्र होनी चाहिए कि अपने फनकार को वो कैसे संभालता है और कैसे उसकी कदरदानी करता है।
देखिए हजूर मैं ये देखता हूँ 50% जो फनकार है ना वो थपकी से भी आगे चलता है। जब आप YouTube पर बात करते हैं, जब YouTube पर आप बताते हैं, तो हमें इतनी थपकी मिलती है कि यार हमें कोई चीज, एक गवाह की हुई खोई हुई चीज जो है वो मिल गई है।
अच्छा, मैं सॉरी आपको, अगर मैं आपका, आपकी इजाजत से टेलीफोन नंबर ये इसमें लिंक में डाल दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी उससे?
नहीं, कोई दिक्कत
हो सकता है पूरी दुनिया से आपको टेलीफोन आने शुरू हो जाए, फिर आपके आप किस मुसीबत में डाल दिया मुझे?
नहीं, वो नहीं।
अच्छा, और दूसरा, आपकी इजाजत से मैं आपके YouTube चैनल का लिंक इसमें डाल दूं, जिसमें लोग उसको सीखें, और जो आपसे डायरेक्ट सीखना चाहे तो वो उसको करे। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ आपको एक, ये मेरे लिए तोहफा लेके आए हैं, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं तो एक लेमैन हूं और सिर्फ एक विजुअली देख सकता हूं कि बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सूरा रहमान की आयात लिखी हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस पे गौर किया तो ये सारी इन्होंने एक तस्बीह बनाई हुई है जो कि अल्लाह के नाम पे लिखी हुई है। इसमें कोई भी लकीर बगैर मसरफ के नहीं है, और जो रंगों की तरतीब है वो रहमत को जाहिर करने की, एक रंगों के जरिए से रहमत को और रहमान को जाहिर किया है। और इसके अलावा इसकी बहुत सी और टेक्निकल जहते भी होंगी जो एक फनकार देख सकता है, और इस किस्म के शाहकार ये गुलज़ार नदीम साहब जो है वो तख्लीक करते हैं। और आप देखिए, पुरानी एक तस्वीर होती है, मोनालिजा एक तस्वीर थी, और वो जो द लास्ट सफर तस्वीर, और उन तस्वीरों ने फनकार को हमेशा के लिए अमर कर दिया, जाबदानी कर दिया। और हमारे यहाँ इसी तरह का, और ये जब उन्होंने मुझे जिक्र किया, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में।
ये तो मतलूक खतूत थे, जो खतूत खत्म हो चुके थे उनको मैंने मिला के, और खत दीवानी जो आज भी मुरव्वज़ है उसको मिला के मैंने जदीद अंदाज में तुगरे को नया अंदाज दिया है
जी।
और इसको मैंने कलर में, यानी जिसे मुसवराना खताती भी कहते हैं, खताताना मुसवरी भी कहते हैं, और खत आर्ट भी कहते हैं, मैं इसको यहाँ ले। आप कह रहे थे कि अब खताती की दौर नहीं रहा, अब ये खताती जो है ना दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। पहले चमड़े पे थी, पहले पत्तों पर थी, फिर ये करतास पर आई, अब ये कैनवस पर आ गई है। अब ये किसी यूसुफ सदीदी साहब ने एक दफा कहा था कि साद कैन को भाई ये है वो है, लोगों ने तनकीद की, तो उसने कहा नहीं, उसने कुरान करीम को ताजु से निकाल कर दीवारों पर सजा दिया है, ये सबसे बड़ी उसका कमाल है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और मेरा भी यही मतम नजर है, और मेरे उस्ताद जहांगीर साहब है उनका भी यही मतम नजर है। तो वो मेरे दोस्त जो अब्दुल हफीज साहब है, उन्होंने जहां ने खताती लिखी है दो जिल्दों में, और पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी तहकीक नहीं की। वो भी ये कहते हैं कि आज के दौर में इसकी इतनी शदीद और बहुत जरूरत है, अगर पाकिस्तान में फनकारों की सरपरस्ती की जाए तो हजारों लियोनार्डो विंची भी पैदा हो सकते हैं, रफेल भी पैदा हो सकते हैं, हजारों ऐसे फनकार पैदा होते हैं जो दुनिया से टक्कर दे सकते हैं।
अच्छा, देखिए मैं यानी एक ना जैसे तस्वीर लगी देख लगा हाँ बड़ी खूबसूरत है, मैंने जरा गौर से इसको देखा तो इसमें कोई भी लकीर बगैर मकसद के नहीं है
जी। वो पूरे वो जिस तरह सैयदना फारूक अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि कुरान करीम के एक लफ्ज़ का माना साफ साफ होता है, और मैं जब कुरान करीम के एक आयत को लेता हूँ तो वो हजारों दरवाजे खुल जाते हैं तखय्युल के हवाले से। तो फिर ये बिस्मिल्लाह के हवाले से जो कुरान करीम का मैं जो काम करना चाहता हूँ वो बहुत मिसाली काम।
जी फरमाइए कि आपकी नुमाइशें हुई हैं?
हाँ, मैंने नुमाइशें जो है इस्लामाबाद में जो एक इज्तमाई नुमाइशें होती हैं उसमें भी हिस्सा लिया है, और फैसलाबाद में भी।
आपकी एक अपनी
डेडी, मेरी अपनी जो नुमाइश थी वो 2004 में रोज रमत जंग के दर एहतमाम भी हुई थी, और इधर भावलपुर में भी।
तो देखिए मुझे नहीं पता कि कौन कौन इसको देखेगा, लेकिन वो शख्स, हर वो यानी हमारे दोस्त जिनका फन से ताल्लुक है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव उस जगह पर है जो कि इसको, इसकी सरपरस्ती कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि एक फनकार को हम फाइनेंशियली कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें या उसको बेफिक्र करें उससे, और ताकि वो अपने यकसुई से काम करे, मसला ये भी है कि इस फन को कैसे पूरी दुनिया तक पहुंचा जाए। मेरे ख्याल के अंदर तो ये बात जो है ये इस काबिल है इनका फन कि इसकी इंटरनेशनल पजीराई, यानी नेशनल नहीं सिर्फ इंटरनेशनल पजीराई।
ये हजूर आप देखे ना गुलजार नदीम कैलीग्राफर के नाम से यूट्यूब पर, तो वहां मैं जो जदीद अंदाज में खताती है उसका भी अंदाज मैंने लिखा हुआ है। आप ये देखे, मुझे एक बंदे ने कहा कि लियोनार्डो विंची की इतनी बड़ी दाढ़ी है वो क्या वजह थी? जो मैंने तहकीक की वो ये था कि 6-6 माह तक वो जक सुई से काम करते थे, जब दाढ़ी इतनी बढ़ जाती थी और काम भी मुकम्मल हो जाता फिर वो बाहर। तो यहाँ तो फनकार को नमक की फिक्र पड़ी।
अरे अरे, देखो अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, उस मुआशरे को माफ करे जिस मुआशरे के अंदर, और उस मुआशरे को हदायत दे जिस मुआशरे में फनकार की कदर नहीं है। जब हर वो फन जिससे सिर्फ पैसे कमाए जा सकते हैं ये किए जाए तो मशीनें बनती हैं, लेकिन जो इंसान बनता है और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और शोर डेवलप होता है वो इन जैसे अजीम लोगों की वजह से होता है, शायरों की वजह से होता है, आर्टिस्ट की वजह से होता है। और इलम पे बात काम करने वालों के, और माशरे में अगर हम पैरेलल सोशल साइंसेज को, आर्ट को, कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे तो माशरा हो सकता है पैसे के हिसाब से खुशहाल हो जाए लेकिन अपनी जो शऊरी बलूगत है उसको कभी भी नहीं पहुंचेगा और शऊरी तौर पर वो इसी तरह नाबालिग ही रहेगा। और जो कहते रुजाल का आपने जिक्र किया था तो वो किसाब कैन नहीं पैदा हो रहे, और वो तो कहते रुजाल तो ये है कि कोई भी जाए तो उसका मुतबादल पैदा नहीं होता, वो फनकार जाता है तो उसका मुतबादल पैदा नहीं होता, तो हमें इस सारे में बड़ा सीरियस होना चाहिए।
हमारे दोस्त अब्दुल रफी साहब कहते हैं कि कहते रुजाल का मतलब ये नहीं है कि वो वापस आए, उसका मतलब ये कि वो जो खला छोड़कर जाते हैं वो पुर करने के लिए कोई
मौजूद।
अब इब्ने मुकला ने खताती की, फिर इब्ने बवाब आए और दूसरे 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 फनकार है, उन्होंने वो खला पुर करते करते खताती ये इतनी तरक्की कर गई कि दुनिया हैरान रह गई।
जी
तो वो खला पुर करने के लिए अब आना चाहिए और ये जरूरत है।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका,
ठीक
आप मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे आपने इज्जत बख्शी, मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आप मेरे पास आए और फिर आपने मुझे इतना खूबसूरत ये तोहफा भी दिया। मैं और मैं इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे कुछ बातें कर लें, ये मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, फेसबुक के पेज पर भी डालूंगा, और जो लोग इसको इसमें से टेक होम मैसेज लें तो मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि इसको सीरियस लेके और इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा भी दिल करता है, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर मशहूर होते हैं गंदी हैंड राइटिंग के लिए, तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं आके आपका शागिर्द बनूं और आपसे कम से कम नुस्खा जो है वो साफ साफ लिखना जो है वो तो सीख लूं कम से कम।
माशाल्लाह आपकी बातें भी साफ है, आपका लिखना भी साफ है और ये आप जमाना साध आदमी है,
बड़े
है,
बहुत
दिल से कदर कर,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।